الحمد لله والصلاة على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ غیر اللہ سے دعا کرنے کو شرک کہا ہے، یعنی لوگ جو مزارات پر جا کر دعا کرتے ہیں، کسی کو دعا کے لیے کہنا بھی کیا شرک ہے؟ میں نے یقیناً کسی گفتگو میں کہا ہوگا کہ غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے، اس لیے کہ حقیقت یہی ہے، لیکن مزارات پر جا کر رب تعالی سے دعا مانگنے کو شرک نہیں کہا۔ تھوڑا سا فرق ہے کہ جب ہم کسی مزار پر جا کر صاحب دعا سے رفع مشکل کے لیے کہتے ہیں یا حاجت روائی کے لیے کہتے ہیں تو وہ شرک ہے کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، لیکن اگر کسی مزار پر ہم گئے اور وہاں ہم نے فاتحہ خوانی کی اور اس کے بعد رب کے حضور یہ عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے اس نیک بندے کے صدقے میری فلاں ضرورت پوری کر دے، میری فلاں حاجت پوری کر دے، تو وہ شرک نہیں ہے۔ جب بھی ہم مزار پر جائیں تو احتیاط یہ ہم کر لیں کہ فاتحہ خوانی تو کریں برائے ایصال ثواب اس صاحب مزار کے لیے، لیکن اپنی مشکل اور اپنی ضرورت صرف اور صرف رب کے حضور پیش کریں اور رب ہی سے اپنی اس مشکل کے دور ہونے اور اس حاجت کی پوری ہونے کی دعا کریں۔ اس سے وہ کلام جو آپ نے فاتحہ خوانی کے لیے وہاں پڑھا ہے اس کی برکت حاصل ہوتی ہے اور رب تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور انہیں پوری بھی کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کسی اور سے دعا کے لیے کہنا شرک ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ تلقین فرمائی تھی کہ دوسروں سے دعا کرنے کو کہو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت اویس کرنی کے لیے میسج بھیجوایا تھا کہ اویس کرنی کو کہنا کہ وہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے، تو وہ شرک قطن نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے میرے بارے میں، فرمایا ہے ان صاحب نے کہ آپ نے فرمایا کہ فقیری اور علم ورد اور وظیفوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کچھ اور لوازمات کا پورا ہونا ضروری ہے، جبکہ دوسری جانب آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ جب آپ کے مرشد نے آپ کو 6 بجے بلایا اور ایک لفظ ورد کرنے کو دیا تو آپ یہ پوچھنے پر بتایا تھا کہ اس ورد سے علم حاصل ہو جائے گا، کشف بھی جاری ہو جائے گا، اور یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے چلتی ہیں؟ میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ فقر، معرفت، ولایت یہ صرف وظیفے اور ورد ذکر اذکار سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں اس ایک بات کو کلیئر کر دوں جو انہوں نے کوٹ کی ہے، وہ پوری بات یوں تھی کہ میں نوجوانی کی ابتدا ہی سے 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے شام کو پڑھتا رہا ہوں، لیکن میں کہیں پہنچ نہیں پایا تھا۔ اس کا ثواب اور اس کی برکات یقیناً حاصل ہوئی ہوں گی مجھے، لیکن علم کے کسی راستے پر میں چل نہیں پایا تھا۔ آخرکار मुर्शिद साहब से मेरी मुलाकात हो गई, तो आपने जो पहला काम किया वो ये किया कि मुझे मना कर दिया कि मैं किसी किस्म का कोई वजीफा और कोई जिक्र अजकार न करूं, बल्कि सीधी सीधी नमाज पढ़ूं और कुरान पढ़ूं। उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने वो एक लफ्ज दिया कि ये पढ़ा करो। अब चूंकि मुझे तो लगन थी इस बात की कि मुझे इल्म हासिल हो, और चूंकि जवानी का दौर था तो कश्फ और करामात बहुत बड़ी अट्रैक्शन रखती थी। जब मैंने पूछा कि साहब इससे मुझे इल्म हासिल हो जाएगा, तो फरमाया कि हाँ हो जाएगा। उनसे पूछा कि इससे कश्फ हासिल होगा कि जरूर होगा, करामात हासिल होंगी कि बिल्कुल हो जाएंगी, इससे मैं साहिब अमर हो जाऊंगा कि बिल्कुल हो जाओगे, इससे दुआएं कबूल हो जाया करेंगी कि हो जाया करेंगी। अब जो बात मैं कहता था उसका जवाब एक ही आता था कि हाँ हो जाएगा। तो जब हर काम का जवाब यही है कि हाँ हो जाएगा, तो इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये नहीं कि उस विर्द से इल्म हासिल हो रहा है, वरना ये तो मुमकिन ही नहीं कि कोई एक चीज आदमी पढ़े और चार ऑल अराउंड अचीवमेंट्स हो जाएंगी उसकी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो तो मेरी राह सीधी करके उस पर उंगली पकड़ के खड़ा कर दिया कि इस राह पर चलते चले जाओ, और बात की गुफ्तगू ने साबित भी कर दिया कि उसका मतलब यकीनन यही था जो मैं समझा। कि एक मौके पर कहा कि मियां मैं तो अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास तुम्हारा हिस्सा था, तुम्हारी शक्ल मुझे बहुत देर पहले दिखा दी गई थी कि तुम्हारा हिस्सा है मेरे पास, तुमने आने में देर कर दी, तो मेरे पास तुम्हारा जो हिस्सा था वो मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम मेहनत करोगे आगे बढ़ते जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो यहीं के यहीं खड़े रह जाओगे। फिर एक और मौके पर जब यही जिक्र अजकार की गुफ्तगू हो रही थी, तो फरमाया कि मन्नतों का क्या है, मन्नतें तो इन मैले कपड़ों के ढेर से भी पूरी हो जाती हैं, तुम तो हमारे नाम का विर्द करते जाओ तो मंजिल को जा पहुंचोगे। और फिर फरमाया कि तुम हमारे नाम को भी क्यों जपो, सिर्फ हमसे प्यार करते जाओ मंजिल को जा पहुंचोगे। अब असलियत इस पे खुल जाती है बात की। अब ये मैले कपड़ों के ढेर से मन्नतें पूरी होने पर गालिबन फिर गलतफहमी कोई पैदा होगी, इसलिए मैं वजाहत कर दूं कि बहुत सी चीजें इस्तारन बयान की जाती हैं, इस्तारा होता है वो। अगर किसी चीज के बारे में ये जाहिर करना हो कि बहुत मामूली सा काम है, तो उसको इसी तरह हम बयान करेंगे। इस काम का क्या है, इसको तो 6 महीने का बच्चा भी कर डालेगा, लेकिन 6 महीने का बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पाता, वो इस्तारन कहा जाता है। इसी तरह मैले कपड़ों के ढेर से पूरी हो जाती है। मुराद ये थी कि मन्नतें पूरी होना तो कोई बात ही नहीं है, उसकी अहमियत क्या है। और यह है भी सच, हम लोग तो ऐसे ही मुतासिर होते हैं इस बात से कि फला साहब मुस्तजाब दावा थे, उनकी दुआ कबूल होती है, फला साहब साहिब कश्फ हैं, फला साहब साहिब करामत हैं, हम बहुत मुतासिर होते हैं। ये मुतासिर होने की कोई चीज ही नहीं है इसमें। आप और मैं सोने से बहुत मुतासिर होते हैं कि गोल्ड है भाई, उस सोने को गोल्ड किसने बनाया, पारस ने। तो मुतासिर पारस से हुआ जाए या सोने से, जो चीज भी पारस से मस कर गई वो सोना हो गई। तो ये दुआओं का कबूल होना, साहेब करामात होना, साहेब कश्फ होना, साहेब अमर होना, इसकी हैसियत तो सोने की सी है, गोल्ड की सी। बात यह है कि ये किस चीज से वजूद में आई, वो पारस है। तो मुतासिर होने की चीज तो पारस है, सोना नहीं, तो देखा ये जाए कि वो क्या चीज है जिसने किसी शख्स को एक आम आदमी से उठाकर इस पोजीशन पर बिठा दिया कि वो साहिब अमर हो गया है, साहिब कशफ करामात हो गया है, या मुस्तजाबुद दावात हो गया है। तो उसी चीज को हासिल कर लिया जाए, उस पर अमल कर लिया जाए, तो हम भी हो जाएंगे। तो मैले कपड़ों के ढेर से मन्नतें पूरी होने से मुराद ये थी उनकी। लेकिन जिक्र अजकार की बात कि वो एक लफ्ज का वर्द किया तो 2.5 साल में कशफ हासिल हो गया, करामात हासिल हो गए। जबकि मैं बहुत ही नौजवानी की उम्र से इसी राह पर लगा था, मेहनत किए जा रहा था, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं था। यहां 2.5 साल में पहुंच गया मैं। और वो जो 40-42 वजीफे हैं, कहने को तो 40-42 वजीफे थे, लेकिन दर हकीकत उसका हाल वही था जो एक होशियार मुसलमान का है कि 4 बीवियों की इजाजत है, वो एक वक्त में 4 रखता, तलाक देता नहीं ले आता, तलाक देता नहीं ले आता। तो मैं भी वज़ाइफ के साथ वही सलूक कर रहा था कि जिस वजीफे से दिल भर गया उसको छोड़ के एक और पढ़ना शुरू कर दिया, फिर किसी से दिल भर गया तो उसको ड्रॉप किया, नया शुरू कर दिया। और तो और मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी कई साल पढ़ लिया बैठ के। कुरान पाक की एक सूरत का कुछ हिस्सा ऐसा था कि उसमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आता था, वो मुझको बहुत पसंद था। ये गालिबन 66 की बात, 1966, जब मैं अभी 22 इयर्स का था। तो जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था उनके इमाम साहब से अच्छी खासी अलग सलग थी, तो उन इमाम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि साहब सूरत का वो हिस्सा पढ़िए जिसमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आता है। कहने लगे अच्छा मैं याद कर लूं फिर पढ़ूंगा। उनको याद करते करते मेरे ख्याल 5-6 दिन लग गए, या वो ऐसी मसरूफ हो गए, कुछ हो गया। तो मालूम हुआ कि वहां उनका झगड़ा हो गया है, वो 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए। झगड़ा बढ़ गया, मामला ठीक हुए बाद में जब, तो महकमा औकाफ ने एक नए इमाम साहब वहां खड़े कर दिए। तो मैंने उन इमाम साहब से कहा कि वो पढ़ दीजिए जरा। मैं कहा ठीक है, मुझे याद नहीं लेकिन मैं इसे याद कर लूं फिर पढ़ के बताऊंगा। एक दिन कहने लगे मैं इंशाल्लाह कल मगरिब की नमाज में तलावत कर दूंगा। उसी दिन रात को उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो न पढ़ पाए। तीसरी बार जब मैंने अर्ज किया तो खुद मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो इमाम साहब मुझे कहने लगे कि मैं हैरान हो रहा था कि ये सूरत का ये हिस्सा क्यों सुनना चाहते हैं। पहले इमाम साहब वैसे ही निकल गए इसको पढ़ने की कोशिश में, मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब आपका एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा चलिए छोड़िए, ये आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, मैं ही पढ़ लेता हूं। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का वजीफा शुरू कर दिया पकड़ के। तो इस तरह के काम करता रहा, पहुंचा कहीं नहीं। ये दर हकीकत मुर्शद साहब की तवज्जो थी। अब वो तवज्जो उन मायनों में नहीं है जिन मायनों में किताबों में लिखा है या किस्से कहानियों में सुनते हैं कि साहब तवज्जो डाली और बंदा वली अल्लाह हो गया, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। वो तवज्जो यही होती है कि इंसान को सीधी राह पे डाल देती हैं कि हम लाहौर शहर की सड़कों की भूल भुलैयों में खोए हैं और इस्लामाबाद जाना है उसके लिए मोटरवे ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन इन सड़कों से वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। तो किसी साहब से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे मोटरवे पर चढ़ना है, और वो साहब आपसे ये कहें कि अच्छा ऐसा करो कि मैं आपके आगे आगे चलता हूं, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो ले जाकर वो मोटरवे जहां से शुरू हो रहा है मुल्तान रोड पर, वहां आपको खड़ा कर दें कि साहब ये मोटरवे आ गया, इस पे वाक चढ़ जाइए, यहां से 376 माइल्स है इस्लामाबाद, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर आप जाएंगे तो 3.5 घंटे में आप इस्लामाबाद जा पहुंचेंगे। चले जाइए, वो आपको मोटरवे के एक सिरे पर चढ़ाकर चले जाएंगे। ये वहां पर मुनहसर है कि आप 120 किलोमीटर की रफ्तार पर नॉन स्टॉप ड्राइव करते हुए इस्लामाबाद 3.5 घंटे में पहुंच जाएं, या रास्ते में आने वाले किसी एग्जिट को देख के चलिए गुजरांवाला चलते हैं, यहां कुछ खाना वाना खाते हैं फिर जाएंगे, तो गुजरांवाला का एग्जिट ले लें आप, वहां शाम तक वक्त आया कर दें, या रास्ते में आने वाली सर्विस एरियाज में किसी एक सर्विस पर जाकर बैठ जाएं आप, तो हो सकता है आप नेक्स्ट डे पहुंचे, हो सकता है शाम को पहुंचे, हो सकता है 11-12 घंटे ले लें आप, लेकिन उसमें गाइड करने वाले का कोई कसूर नहीं, उसने तो आपको सही माइलेज भी बता दी और सही स्पीड भी बता दी कि आपका चालान ना होने पाए, और आपको टाइम भी बता दिया कि कितना वक्त लगेगा आपको। लेकिन अगर हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, अपनी ख्वाहिशात से मगलूब होके किसी और तरफ निकल जाएं या रास्ते में आराम के लिए रुक जाएं, तो वो हम पर मुनसर है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उस आदमी ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी कि आपको मोटरवे पर चढ़ा दिया उसने, तो बिल्कुल यही काम मुर्शिद करता है कि वो आपको रास्ता दिखाता है कि ये सड़क है जो इस तरफ जा रही है और इस पर चलते चलो। यही काम मेरे मुर्शिद साहब ने किया था। तो इसमें जो वर्द और वजीफे और जिक्र अजकार मुजाहिदे रियासतें, ये जो रोल प्ले करते हैं वो सिर्फ इतना है, मुस्तकिल मजाजी आती है उससे, पंक्चुअलिटी आ जाती है और कंसंट्रेशन बढ़ती है, एक नमाक बढ़ जाएगा इंसान का। इन सब में इन नमाक जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी दोनों, इंसान रेगुलर भी हो और पंक्चुअल भी हो, ये बहुत अहम है। इंसान की बॉडी केमिस्ट्री का ताल्लुक बराह रास्त चांद से है, जिस तरह चांद के दो साइकिल हैं 24 घंटे का और महीने भर का, ये दोनों ही साइकिल ह्यूमन केमिस्ट्री पर असरअंदाज होते हैं। इंसानी दिमाग कितनी तेजी से काम करता है, कितना शार्प है, उसका ताल्लुक ज्यादातर इस बात से है कि दिमाग की तरफ आपकी ब्लड सर्कुलेशन कितनी ज्यादा है। जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगी, जिस कदर ज्यादा खून जाएगा दिमाग की तरफ, दिमाग को उतनी ही ऑक्सीजन मिलती है और वो उतना ही शार्प होता है दिमाग। अगर कभी आप अपने जिस्म पर तजर्बा करें और दिन भर में हर आधे घंटे के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, तो आपको पता ही चलेगा कि कंसिस्टेंट नहीं ब्लड प्रेशर आपका, मुख्तलिफ औकात में उसकी रीडिंग मुख्तलिफ आएगी, कम ज्यादा होती जाएगी। तो हफ्ता भर ये रीडिंग ले लीजिए और उन 7 दिनों के ग्राफ बना लीजिए और ग्राफ को अपने सामने रखिए, तो एक हकीकत सामने आएगी कि दिन के एक मखसूस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन आपकी बहुत तेज हो जाती है और इसी तरह दिन के किसी मखसूस हिस्से में ब्लड प्रेशर ड्रॉप किया होता है आपका। जिस वक्त ब्लड प्रेशर का हाईएस्ट पॉइंट आता है उस ग्राफ में, 7 दिन का मीन निकाल लीजिए, वह हाईएस्ट पॉइंट निकल आएगा आपका। ये वो वक्त है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होगा और कंसंट्रेशन स्पैन भी उस वक्त सबसे ज्यादा वर्ड बेस्ड होता है, उस वक्त पढ़ाई की जाए तो उसके असरात कुछ और मुरतब होते हैं इंसान पर। पढ़ाई से मुराद जिक्र अस्कार है, और अगर वैसे भी दुनियावी पढ़ाई भी की जाए तो उसका नतीजा भी बहुत अच्छा निकलेगा। फकीर का इल्म बगैर किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में गए उसको बता देता है कि इस आदमी के लिए पढ़ने के लिए सबसे मुनासिब तरीन वक्त कौन सा है। तो आपको वो यही कहेगा कि फला वक्त पर पढ़िए। इसलिए मैं पंक्चुअलिटी पर जोर दे रहा था कि वो जो टाइम उसने बताया है फकीर ने वो इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ एक दूसरा पहलू भी है इसका कि एक ही लफ्ज को अगर हम सुबह पढ़ें तो उसके असरात कुछ और हैं, दोपहर के वक्त पढ़ें कुछ और हैं, सपहर में पढ़ें कुछ और हैं, रात को पढ़ें तो कुछ और हैं। इंसान वही है, पढ़ाई भी वही है, तादाद भी वही है, लेकिन असरात तब्दील होते चले जाते हैं। तो इसलिए पंक्चुअलिटी बड़ी जरूरी है कि अगर किसी ने कहा कि दोपहर 11 बजे शुरू कीजिए और जवाल का टाइम शुरू होने से पहले पहले इसे मुकम्मल कर लीजिए, तो वो वक्त बहुत अहम है, उसमें उसी वक्त पे शुरू कीजिए और उसे खत्म कर लीजिए। रेगुलरिटी का यह है कि एक पत्थर पर भी अगर पानी का एक एक कतरा एक एक बूंद गिरती रहे तसलसल के साथ तो पत्थर में सुराख हो जाता है। पाबंदी के साथ जब हम जिक्र अस्कार करते हैं तो उसके असरात हमारी बॉडी केमिस्ट्री पर और हमारे जहन पर उतरते हैं, मरतब होते हैं और उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स हमें मिलने लगते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर रेगुलरिटी ना हो तो पढ़ाई का जो असर आप हमारी बॉडी केमिस्ट्री पर आया है, जहन पर आया, वो जायल हो जाता है, फिर नए सिरे से हमें मेहनत करना पड़ती है। तो यूं हम स्नैक एंड लैडर गेम खेलने लगते हैं, पढ़ते रहे उसके साथ हमें मिलना शुरू हुए, सडनली हमने किसी वजह से छोड़ दिया, नारा कर लिया, वो असरात वॉश ऑफ हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम स्नैक एंड लैडर गेम खेलते हैं तो खेलते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले जा रहे हैं और सडनली मालूम यह हुआ कि होम के करीब पहुंचने से जरा पहले सांप के मुंह में आ गए और फिर वो जीरो पर पहुंच गए आप। तो स्नेक एंड लेडर गेम शुरू हो जाती है, इसमें वक्त सवाए जाया होने के और कुछ मिलता नहीं है, सवाब मिलता है। तो उसमें रेगुलरिटी भी अहम है, पंक्चुअलिटी भी अहम है। तो उससे फिर हमें एक खास तरह का डिसिप्लिन हमारे अंदर पैदा होता है, कुव्वत बर्दाश्त पैदा होती है और मुस्तकिल मजाजी आती, कंसिस्टेंसी आती है हमारे अंदर, जो किसी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है तीनों चीजें। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि फकीर जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, ये खासियतें उनमें पैदा हो जाती हैं। वर्द और वजीफा यूं हमें हेल्प करता है। इसमें एक और सवाल है जो मैं समझ नहीं पा रहा, मसला ये है कि वो अंग्रेजी में लिखा है और आज के लिए मेरी अंग्रेजी यहीं खत्म हो गई, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है। ये एब्रीवेटेड फॉर्म है गालिबन किसी चीज की। एक साहब ने सवाल, फेसबुक इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट, इट इज द लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क, ऑन 20th May सम पीपल कॉल्ड ऑन इवन ड्रॉ डे ऑफ आर प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैनी पीपल रिपोर्टेड दैट इवेंट बट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेबसाइट प्रोटेक्टेड इट अंडर द बैनर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। Such act of blasphemy is unimaginable by Muslims. Please explain. Now, should a Muslim act and what measures he should take to stop it? इसमें शायद जो मेरा नजरिया है वो आप में से किसी को भी पसंद ना आए, मेरे व्यूज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसी शख्स के वालिद उसके लिए बड़े मोहतरम हैं अगर उस शख्स के बेटे अर्निंग हैंड्स हैं, नेक हैं, इंडिपेंडेंट हैं और ताकतवर हैं, तो मोहल्ले में किसी शख्स को कभी ये जुरत हो ही नहीं सकती कि उस बूढ़े बाप को एक लफ्ज भी कोई कुछ कह दे या उसके करीब से गुजरता हुआ खांसी दे। लेकिन अगर उस शख्स के बेटे नकम्मे हैं, फरेबदेही करते हैं लोगों के साथ, हर एक से उधार मांगते हैं, हर एक से भीख मांग के खाना खा लेते हैं, तो ऐसे बाप को जिसका जी चाहेगा वो धक्के भी दे देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस 1.2 बिलियन मुसलमानों की जानों से कहीं ज्यादा कीमती है, कहीं ज्यादा मोहतरम है। सवाल यह है कि एक कमजोर नकम्मे नखट्टू और अखलाकी लिहाज से कमजोर मजमुआ जो है, मुसलमानों का कौम तो है ही नहीं, हम उम्मत है ही नहीं, इनकी बात कौन मानेगा, कौन परवाह करेगा? तो वेबसाइट के मैनेजमेंट अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर रही है कि हर आदमी को आजादी है कि वो इजहार ख्याल करे, आज अगर हम ताकतवर हों और हम खुददार हों, तो किसी की जरूरत नहीं है कि इस किस्म की कोई हरकत कर सके। यहूदी बहुत कम तादाद में है दुनिया में, तकरीबन टोटल यहूदियों की तादाद इस वक्त पूरी दुनिया में 2 करोड़ और कुछ लाख है जो पूरी दुनिया में फैले हैं। दुनिया का हर शख्स उनकी फेवर में बोलता है, किसी को जरूरत नहीं होती कि उनकी अखलाकी हालत के बारे में कोई राय दे दे, यहूदियत के बारे में कोई राय दे दे। उन्होंने जो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर कब्जा किया हुआ है उसके बारे में कोई उसके खिलाफ को बयान दे दे, किस लिए? कि उन्होंने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि जो कोई बोलेगा उसको मालूम है कि मैं अपनी शामत को आवाज दूंगा। कोई यहूदी किसी को कभी धमकी नहीं देता जुबानी, लेकिन सबको डरा के रखा है। जब हम ताकतवर थे अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त किसी शख्स को ऐसी जरूरत नहीं हुई कोई खाका बना ले, कुछ कर ले। आज अगर हम फिर वैसी ही ताकत इकट्ठी कर लें और मिलिट्री माइट से पहले हमें मॉरल स्ट्रेंथ गेन करना होगी, क्योंकि मॉरल स्ट्रेंथ के बगैर फिजिकल स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं है, इंसान उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। आज मॉरली हम स्ट्रांग हो जाएं, खुददार हो जाएं, तो देखिए पूरी दुनिया आपसे कांपने लगेगी। मजाल है कभी कोई ऐसी हिम्मत कर ले, ऐसी जसारत कर ले। ये तो एक इसका पहलू है जो मेरे अपने व्यूज हैं, लेकिन इस किस्म की जसारत करने वाला शख्स मुस्तहिक है बदतरीन सजा का। और अब भी अगर सब मुसलमान हुकूमतें 56 की 56 गवर्नमेंट्स इकट्ठी होकर इस मामले को यूनाइटेड नेशंस की फोरम पर ले जाएं और वहां आवाज उठा लें, तो कोई वजह नहीं है कि ये लोग न सिर्फ ये कि माफी मांगे बल्कि आइंदा के लिए भी इससे बाज आ जाएं। तो मेरे नजदीक तो यही एक रास्ता है कि इस एक पर्टिकुलर मामले पर सबको इकट्ठे होके इसको अक्वाम मुत्तहिदा के फोरम से उठाना चाहिए। अगर हम इकट्ठे होके आवाज उठाते हैं तो एक खासी बड़ी तादाद है मुसलमानों की, आबादी के लिहाज से तकरीबन 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड वो बन जाते हैं। तो इस आवाज को इग्नोर करना आसान नहीं होगा, लेकिन इकट्ठे तो हो हम। अभी हम जिक्र कर रहे थे वज़ाइफ का, वर्ड्स का। तो देखिए, जिस तरह इबादत को सिर्फ इबादत समझ के करने से इबादत का हक अदा नहीं होता, इबादत का हक सिर्फ उस वक्त अदा होता है जब हम उसकी तीन चीजें इकट्ठी लेके चलें। हुक्मे इलाही की तामील का जज्बा कि ये इबादत अल्लाह ने हम पे फर्ज की है और उसका हुक्म है, हमें अपने रब का हुक्म मानना है, ये जज्बा। दूसरा, इबादत का जौक और शौक, इबादत से लगन हमारी ऐसी हो कि हम इबादत को जौक और शौक के साथ अदा करें। और तीसरा, इस इबादत के पीछे अपने रब से मोहब्बत का जज्बा। अब रब से मोहब्बत का जज्बा क्या है कि मेरा रब सबसे बड़ा है, मेरा रब पालनहार है और वो इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए। जब तक कि ये तीन चीजें इकट्ठी नहीं होती इबादत के पीछे, इबादत का हक अदा नहीं होता। जब हम इन तीन जज्बों से मغلوب हो जाते हैं, ये तीनों जज्बे हम पर غالب आ जाते हैं कि हमें अपनी ड्यूटी पूरी करने का खौफ हो कि मुझे ड्यूटी पूरी करना है वरना सजा मिलेगी, और दूसरी तरफ ये हो कि मैं कुछ इस अंदाज में अपनी ड्यूटी पूरी करूं कि वो सबसे अलग नजर आए कि फलां शख्स ने अपना फर्ज अदा किया है, उसमें ऐसी खूबसूरती और ऐसी सफाई और ऐसी खुशबू शामिल हो जाए उसमें, और तीसरा अपने रब की मोहब्बत से मजबूर होकर उसकी हम इबादत कर रहे हों। तो वो इबादत रब से मिला देगी। जब वज़ाइफ का जिक्र एक बार हो रहा था तो मैंने यहां एक ईंटें उठाने वाले मजदूर, एक मेसन और एक आर्किटेक्ट की मिसाल दी थी कि आर्किटेक्ट एयर कंडीशन कमरे में बैठ के ड्राइंग बोर्ड पर खड़ा होके 8-10 लकीरें खींचता है और वो एंटीसिपेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 2% आपसे अपनी फीस ले लेता है आर्किटेक्चर की। इसमें ज्यादा से ज्यादा उसके 4 घंटे सर्फ हो जाते होंगे, जबकि मेसन आर्किटेक्ट की 4 घंटे की मेहनत को अमली शक्ल देने के लिए कम से कम 3 महीने सुबह से शाम तक हर रोज मेहनत करता है, फिर कहीं जाके आर्किटेक्ट के बनाए हुए नक्शा जमीन पर कंक्रीट के ब्लॉक की शक्ल इख्तियार करता है, और वो ईंटें उठाने वाला मजदूर चिलचिलाती धूप में सुबह से रात तक बोझ उठाए हुए उस खतरनाक लरजती हुई सीढ़ी पर चढ़ता हुआ ऊपर की मंजिल में ईंटें पहुंचाता है, सीमेंट पहुंचाता है, रेत पहुंचाता है। बावजूद इसके कि मजदूर सबसे सख्त और खतरनाक काम कर रहा है, फिर भी सबसे कम मुआवजा पाता है। मेसन गर्चे धूप में बैठा है लेकिन सर पर उसने रुमाल रखा हुआ है, एक ही जगह बैठ के वो दीवार बना रहा है। उसका काम इतना सख्त नहीं जितना मजदूर का, और ना ही उसमें उतना खतरा है, फिर भी वो मजदूर से 5-6 गुना ज्यादा मजदूरी ले रहा है। आर्किटेक्ट ने टोटल 4 घंटे काम किया है और एयर कंडीशन कमरे में 8-10 लकीरें खींच के आपके हवाले कर दी हैं और सबसे ज्यादा मुआवजा लिया है उसने। फर्क क्या आया? मामूली सा एक फर्क है कि ईंटें उठाने वाला मजदूर सिर्फ मेसन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है कि वो ईंटों का पानी लगाता रहे, गीली रहे ईंटें, फिर उन ईंटों को सर पे उठा के तो जहां मेसन बैठा है वहां उसके पास ले जाके रख दे। ये उसको इंस्ट्रक्शंस है मेसन की और मजदूर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए जा रहा है। इसके अंदर उसकी सिर्फ फिजिकल लेबर इन्वॉल्व है, दिल और जहन उसका आजाद है, जहां चाहे वो दिल और दिमाग उसका फिरता रहे, वो सिर्फ हाथों से काम किए जा रहा है। इसके बरक्स मेसन जो है वो अपना माइंड अप्लाई कर रहा है, जो कुछ उसने सीखा था अपने उस्ताद से वो उसको अप्लाई कर रहा है दीवार बनाते वक्त। फिर जब वो 3-4 लेयर्स ब्रिक्स की लगा लेता है तो उनको चेक करता है कि ये सीधी भी हैं या नहीं है। ईंटों के दरमियान जो मॉर्टर की लेयर उसने दी है वो लेयर यूनिफॉर्म हो, इसी तरह मॉर्टर की रेशो वो उसकी यूनिफॉर्म रहे और एक सर्टन रेशो पर उसे मिक्स किया जाए। वो ये माइंड अपना अप्लाई कर रहा है तो उसके हाथ भी काम कर रहे हैं और दिमाग भी काम कर रहा है, तो उसकी मजदूरी उस मजदूर से 5-6 गुना ज्यादा है। आर्किटेक्ट ने अपना इल्म इस्तेमाल किया है, दिमाग अप्लाई किया है और घर के डिजाइन को शौक से बनाया है, वहां उसने अपना जौक और शौक भी इस्तेमाल किया है, दिल भी इस्तेमाल किया है और हाथों से उसने वो लकीरें भी खींची हैं, काम भी किया है। तो इसके हाथ, दिल और दिमाग तीनों अप्लाई हुए हैं इस पर, इसलिए उसकी मजदूरी सबसे ज्यादा है अगरचे उसने कम टाइम लगाया है। तो जब इबादत में हम यूं गुम होते हैं कि हमारा दिमाग, हमारा दिल और हमारा जिस्म वो सब यकसू होकर इबादत में मुब्तिला होते हैं, इबादत करते नहीं हैं बल्कि इबादत में मुब्तिला होते हैं, तो उसका इनाम कुर्बे इलाही की सूरत में मिलता है, उसका मुआवजा सबसे हाईएस्ट और सबसे खूबसूरत होता है। तो वजीफे और वर्द बजाते खुद तो कुछ ना हुए। जिस तरह से ईमान अगर तस्दीक बिल लिसान रहता है तो इंसान मुसलमान तो हो जाता है, मोमिन नहीं होता। मोमिन होने के लिए जरूरी यह है कि तस्दीक बिल लिसान को तस्दीक बिल कल्ब में तब्दील कर दिया जाए, उस तस्दीक बिल लिसान की तस्दीक तस्दीक बिल कल्ब हो जाए तो मोमिन हो जाएगा। लेकिन मोमिन होने के बावजूद कुर्बे इलाही नहीं हासिल कर पाता, तब वक्त के उसका ईमान अमल की सूरत इख्तियार न कर जाए। वो जो उसने मुसलमान होने के लिए तस्दीक बिल लिसान की थी कि जुबान से कलमा पढ़ा और ऐलान किया कि मैं अल्लाह की वहदानियत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान लाया, जहां उसने ये तस्दीक कर दी जुबान से, ये कह दिया, तो वो मुसलमान हो गया। ईमान का इससे अगला दर्जा ये है कि वो तस्दीक करता है कि मैं अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान लाया और कुरान की किताब इलाही होने पर ईमान लाया, उसके साथ ही साथ मैं अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाया, कुरान से पहले नाजिल होने वाली किताबों पर ईमान लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भेजे गए रसूलों, नबियों और पैगंबरों पर ईमान लाया। उससे अगला मरहला आता है कि वो ईमान लाता है रोज़े हिसाब पर, وہ ایمان لاتا ہے اللہ کی تمام صفات پر، وہ ایمان لاتا ہے ایک ایک لفظ پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے تو رب کی دوستی حاصل کرتا ہے. بات پھر وہیں عمل پر چلی جائے گی. اور یہ یاد رکھیے کہ وظیفے اور ورد صرف اور صرف آپ کو انعامات تو دیں گے لیکن کسی منزل تک نہیں پہنچائیں گے. منزل تک آپ کا اخلاص اور عمل پہنچائے گا.